एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में झांकने वाले हैं जिन्होंने हमारी मतलब हम सब की सोच की बुनियाद को हिला दिया, इमैनुअल कांट।
हाँ नमस्कार, और उनके जो काफी जटिल विचार हैं उनको समझने के लिए हम सहारा लेंगे सर रॉजर स्क्रूटन की किताब कांट का।
बिल्कुल, और देखिए कांट को सिर्फ इतिहास की किताब में बंद कोई पुराना दार्शनिक समझना, ये एक बड़ी भूल होगी।
सही कहा, उनकी बातें आज भी उतनी ही ताज़ा और ज़रूरी हैं। आप सोचे ना, एक तरफ तो विज्ञान है जो कमाल कर रहा है, हर चीज़ को समझा देने का दावा करता है, और दूसरी तरफ हम हैं जो अपनी आज़ादी, अपनी नैतिकता, इंसान होने के क्या मायने हैं, इन सब सवालों से लगातार जूझ रहे हैं।
हाँ, ये कश्मकश तो है। तो स्क्रूटन की किताब इसी चीज को समझने में मदद करती है कि कांट ने इन मुश्किल सवालों का सामना कैसे किया था।
अपने दौर की सबसे बड़ी पहेली, मतलब जो ज्ञानोदय का दौर था, उसकी सबसे बड़ी पहेली सुलझाने की कोशिश की।
और वो पहेली क्या थी?
वो पहेली थी कि भाई, विज्ञान की दुनिया जो हर चीज को कारण और प्रभाव से देखती है, बिल्कुल मशीन की तरह,
नियतिवादी।
हाँ नियतिवादी, और हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया जहाँ हम सही गलत, फर्ज आज़ादी, इन सब की बात करते हैं, इन दोनों में तालमेल कैसे बिठाया जाए, ये सवाल था।
और ये सवाल तो आज भी उतना ही बड़ा है।
बिल्कुल,
जब साइंस कहता है, लगता है कि सब कुछ पहले से तय नियमों से चल रहा है, तो फिर हमारी अपनी मर्जी, जैसे फ्री विल कहते हैं,
फ्री विल,
हमारी नैतिक जिम्मेदारी और ये ख्याल कि हर इंसान खास है, यूनिक है, इस पर हम कैसे यकीन करें, कैसे सही ठहराएं इसे?
बिल्कुल। और स्क्रूटन हमें कांट के जवाबों तक ले जाते हैं, और यकीन मानिए ये जवाब ऐसे हैं जो दिमाग को सच में झकझोर देते हैं।
तो इस गहरी चर्चा में उतरने से पहले जरा लेखक के बारे में जान लेते हैं। सर रॉजर स्क्रूटन, वो 1944 में जन्मे, 2020 में उनका देहांत हुआ। ब्रिटेन के एक बहुत ही जाने माने दार्शनिक, लेखक, विचारक थे।
हाँ, और सिर्फ अकादमिक दुनिया में ही नहीं, वो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे, आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में विश्वास रखते थे।
अच्छा,
और उनकी रेंज देखिए, 50 से ज्यादा किताबें लिखी उन्होंने, संगीत पर, राजनीति पर, नैतिकता, फिलॉसफी का इतिहास, मतलब बहुत सारे विषयों पर।
और कांट पर लिखने के लिए वो एकदम सही व्यक्ति थे, ऐसा क्यों?
देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो जर्मन फिलॉसफी, खासकर कांट से लेकर हेगल तक, उस पर उनकी पकड़ जबरदस्त थी। दूसरा, उनकी लिखने की कला, वो मुश्किल से मुश्किल आइडिया को भी बड़ी साफ सरल भाषा में समझा देते थे,
बिना बात की गहराई कम किए।
बिल्कुल, इंटेलेक्चुअल डेप्थ कम नहीं होती थी। और तीसरी बात, उनकी अपनी दिलचस्पी भी खूबसूरती, मतलब एस्थेटिक्स और नैतिकता में थी, जो कांट के विचारों के केंद्र में है।
हाँ, और एक और बात शायद, उनका अपना जो थोड़ा रूढ़िवादी नजरिया था।
हाँ हाँ, वो भी स्क्रूटन के नजरिए को खास बनाता है। वो कांट को सिर्फ नियमों को तोड़ने वाले क्रांतिकारी की तरह नहीं देखते।
तो फिर किस तरह देखते हैं?
स्क्रूटन कांट को उस विचारक के रूप में देखते हैं जिसने ज्ञानोदय के दौर में जो संदेहवाद बढ़ रहा था ना,
स्केप्टिसिज्म,
हाँ, उसके सामने इंसानी गरिमा और नैतिक मूल्यों को बचाने की कोशिश की। तो ये एक थोड़ा अलग दिलचस्प नजरिया है।
ठीक है, तो अब आते हैं किताब पर। स्क्रूटन की ये किताब कांट आखिर है क्या?
इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे इमैनुअल कांट के जो विशाल और कभी कभी डराने वाले विचार है ना, उनके जंगल में एक गाइड के साथ आप घूम रहे हैं।
अच्छा, मतलब सिर्फ लिस्ट नहीं कि कांट ने क्या क्या कहा?
नहीं नहीं, स्क्रूटन का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि उनके सारे विचार आपस में कैसे जुड़े हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या है, एक पूरा सिस्टम कैसे बनता है।
तो ये किताब किन के लिए है? क्या सिर्फ फिलॉसफी के छात्रों के लिए?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उन समझदार आम पाठकों के लिए है, छात्रों के लिए भी है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कांट का नाम सुना है, उनके असर के बारे में जानता है, लेकिन उनकी जो असली भारी भरकम किताबें हैं जैसे क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन,
हाँ, वो तो हिम्मत नहीं पड़ती पढ़ने की।
सही कहा, तो जो उनकी मुश्किलों से घबराते हैं उनके लिए ये किताब बहुत अच्छी है। स्क्रूटन इसे एक सिस्टम की तरह पेश करते हैं जो हमारे वक्त के जरूरी सवालों से भी जुड़ता है।
तो स्क्रूटन हमें एक सफर पर ले जाते हैं। कहानी कहाँ से शुरू होती है?
कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के बौद्धिक माहौल से। एक तरफ डेकार्त जैसे तर्कवादी थे जो मानते थे कि सारा ज्ञान तर्क से आता है,
रैशनलिस्ट्स,
हाँ,
और दूसरी तरफ ह्यूम जैसे अनुभववादी थे जो कहते थे ज्ञान सिर्फ अनुभव मतलब सेंस एक्सपीरियंस से मिलता
है। एम्पिरिसिस्ट ये बिल्कुल।
स्क्रूटन दिखाते हैं कि कैसे ह्यूम के तर्कों ने कांट को जैसे उनकी हट धर्मी नींद से जगा दिया।
अच्छा
हाँ, और उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि शायद इन दोनों के बीच कोई तीसरा रास्ता भी है, और यहीं से कांट की अपनी फिलॉसफी की शुरुआत होती है।
और फिर किताब हमें उनके तीन बड़े क्रिटिक्स की सैर कराती है।
हाँ, पहले वो समझाते हैं कि हम दुनिया को कैसे जानते हैं, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, फिर कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमारी नैतिकता क्या हो, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, और आखिर में कि खूबसूरती और प्रकृति में जो हमें एक मकसद सा दिखता है वो इन दोनों दुनियाओं को कैसे जोड़ता है, क्रिटिक ऑफ जजमेंट।
तो मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि पाठक को कांट के विचारों की पूरी तस्वीर और उनके गहरे असर को महसूस कराना है।
एग्जैक्टली। चलिए तो अब मुद्दे पर आते हैं। स्क्रूटन के जरिए कांट के विचारों की परतें खोलते हैं। सबसे पहले कांट का वो क्रांतिकारी आइडिया, उनकी कॉपरनिकन क्रांति, ये क्या थी? सुनने में बड़ा भारी लगता है।
हाँ, है थोड़ा टेढ़ा, पर कोशिश करते हैं। देखिए, कॉपरनिकस ने क्या किया था? उसने कहा था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य है। उसने पूरा नजरिया बदल दिया।
हाँ,
कांट ने फिलॉसफी में कुछ ऐसा ही किया। पुराने जमाने में माना जाता था कि हमारा दिमाग एक खाली स्लेट जैसा है और दुनिया उसमें जानकारी भरती है, हम बस निष्क्रिय रूप से उसे ग्रहण करते हैं।
पैसिव रिसीवर।
हाँ, कांट ने कहा नहीं, मामला उल्टा है। हमारा दिमाग खाली स्लेट नहीं है बल्कि वो सक्रिय रूप से हमारे अनुभव को आकार देता है। वो एक तरह का चश्मा या फिल्टर है जिसमें पहले से कुछ लेंस लगे हुए हैं।
मतलब दुनिया की जानकारी उन लेंसों से छनकर ही हम तक पहुंचती है।
बिल्कुल, हम दुनिया को हूबहू वैसा नहीं जानते जैसी वो असल में है, बल्कि वैसा जानते हैं जैसा हमारा दिमाग उसे हमें दिखाता है। इसे ही वो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म कहते हैं।
बाप रे, तो स्पेस और टाइम यानी जगह और वक्त वो भी बाहरी दुनिया की चीजें नहीं?
कांट के मुताबिक नहीं, वो हमारे दिमाग के ही वो बुनियादी लेंस या फ्रेम है। हम हर चीज को स्पेस और टाइम में ही अनुभव कर सकते हैं। वो अनुभव के लिए जरूरी शर्तें हैं। वो दुनिया में बाहर नहीं है, वो हमारे देखने का तरीका है।
और इसी तरह कारणता, कॉजालिटी, मतलब ये सोचना कि हर घटना का कोई कारण होता है।
हाँ, वो भी। और द्रव्य, सब्सटेंस, यूनिटी, यूनिटी, ये सब हमारे दिमाग की कैटेगरीज हैं, बुनियादी औजार जिनसे हम दुनिया की कच्ची जानकारी को एक मतलब देते हैं, उसे व्यवस्थित करते हैं। ये चीजें हमें अनुभव से नहीं मिलती बल्कि अनुभव को संभव बनाती हैं।
तो इसका मतलब हुआ कि जो दुनिया हमें दिखती है वो है फिनोमिनल वर्ल्ड, हमारे दिमाग के चश्मे से दिखी हुई दुनिया, और जो असल दुनिया है जैसी वो अपने आप में है वो है नॉमिनल वर्ल्ड।
हाँ बिल्कुल, और कांट के मुताबिक हम इस नॉमिनल वर्ल्ड को सीधे तौर पर कभी नहीं जान सकते। हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, वो सब फिनोमिनल वर्ल्ड तक ही सीमित है।
तो यहीं पर कांट ने ह्यूम जैसे संदेहवादियों को जवाब दिया।
हाँ, स्क्रूटन यही बताते हैं। कांट ने कहा कि विज्ञान इसीलिए वैलिड है, इसीलिए काम करता है, क्योंकि वो इसी फिनोमिनल वर्ल्ड के जरूरी नियमों को समझता है, वो दुनिया जिसे हमारा दिमाग समझ सकता है। ये उसने विज्ञान की नींव पक्की कर दी।
लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि हमारा तर्क सब कुछ नहीं जान सकता।
सही पकड़ा, हमारे ज्ञान की सीमाएं हैं। हम नॉमिनल वर्ल्ड के बारे में सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, उसे जान नहीं सकते।
तो फिर ईश्वर, आत्मा की अमरता, हमारी अपनी आजादी, फ्री विल, इन चीजों का क्या? क्या विज्ञान इन्हें साबित या खारिज कर सकता है?
कांट कहते हैं नहीं, ये वो बड़े सवाल है जहां हमारा शुद्ध सैद्धांतिक तर्क, प्योर थ्योरेटिकल रीजन, उलझ जाता है। जब हम साबित करने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, या हम आजाद हैं या नहीं है, तो हम विरोधाभासों में फंस जाते हैं। दोनों तरफ से तर्क दिए जा सकते हैं।
तो कांट ने क्या किया? क्या उन्होंने इन चीजों को नकार दिया?
नहीं, बिल्कुल नहीं। स्क्रूटन इस पर जोर देते हैं कि कांट का मकसद इन चीजों में विश्वास खत्म करना नहीं था, बल्कि वो कहना चाहते थे कि ये ज्ञान की वस्तुएं नहीं हैं जिन्हें हम वैज्ञानिक तरीके से जान सकें। ये आस्था या तर्क के विचार, आइडियाज ऑफ रीजन है।
तर्क के विचार मतलब?
मतलब ये ऐसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे नैतिक जीवन और यहाँ तक कि वैज्ञानिक खोज को भी गाइड करते हैं, लेकिन जिन्हें विज्ञान कभी साबित या खारिज नहीं कर सकता। ईश्वर, स्वतंत्रता, अमरता, ये नैतिक जीवन जीने के लिए जरूरी मान्यताएं हो सकती हैं। इसीलिए कांट ने कहा था वो मशहूर बात।
कौन सी?
मुझे आस्था के लिए जगह बनाने के लिए ज्ञान को सीमित करना पड़ा।
वाह, कमाल है। तो एक तरफ विज्ञान की दुनिया है जो नियमों से बंधी है, फिनोमिनल वर्ल्ड, और दूसरी तरफ हमारी नैतिकता और आस्था की दुनिया, नूमिनल से जुड़ी हुई, जहां आजादी की गुंजाइश है।
हाँ, कुछ ऐसा ही।
लेकिन इस नैतिक दुनिया के नियम क्या हैं? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत? यही पर कांट का वो मशहूर कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव आता है ना।
बिल्कुल। अब हम आते हैं कांट की नैतिकता पर, जो उनके दूसरे क्रिटिक, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन का मुख्य विषय है। स्क्रूटन इसे बहुत साफ तरीके से समझाते हैं।
क्या है इसका शुरुआती बिंदु?
शुरुआती बिंदु है शुभ संकल्प या नेक इरादा, गुडविल। कांट के अनुसार दुनिया में सिर्फ एक चीज है जो बिना किसी शर्त के अपने आप में अच्छी है, और वो है नेक इरादा।
मतलब कोई काम अच्छा है या बुरा, ये उसके नतीजे से तय नहीं होता।
नहीं, कांट के लिए नैतिकता नतीजों, कॉन्सिक्वेंसेस पर आधारित नहीं है। कोई काम नैतिक रूप से अच्छा तब है जब वो सही नियत, मतलब कर्तव्य की भावना से किया गया हो। इसलिए नहीं कि उससे हमें खुशी मिलेगी या कोई फायदा होगा, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारा फर्ज है।
ठीक है, लेकिन ये कैसे तय होगा कि हमारा फर्ज क्या है, सही क्या है? यही कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव काम आता है।
हाँ हाँ, एग्जैक्टली। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव एक तरह का टेस्ट है, एक कसौटी है अपने कामों को परखने की। इसके दो मुख्य फॉर्मूला है जिन्हें स्क्रूटन समझाते हैं।
पहला कौन सा है?
पहला है सार्वभौमिक कानून का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल लॉ। ये कहता है केवल उस सिद्धांत के अनुसार काम करो जिसके बारे में तुम साथ ही साथ ये भी चाह सको कि वो एक सार्वभौमिक कानून बन जाए।
थोड़ा समझाइए इसे।
मतलब कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं तर्कसंगत रूप से ये चाह सकता हूँ कि दुनिया में हर कोई हमेशा इसी सिद्धांत पे चले? जैसे मान लीजिए मैं झूठ बोलने की सोच रहा हूँ, तो मुझे सोचना होगा, क्या मैं ऐसी दुनिया चाहूंगा जहां झूठ बोलना एक आम नियम हो?
नहीं, क्योंकि अगर सब झूठ बोलेंगे तो किसी की बात का भरोसा ही नहीं रहेगा, समाज चल ही नहीं पाएगा।
बिल्कुल। तो झूठ बोलना इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। ये एक लॉजिकल टेस्ट है। ये हमें अपनी सहूलियत या इच्छा के हिसाब से नियम तोड़ने से रोकता है। ये किसी भगवान का आदेश नहीं, ये तर्क की जरूरत है।
ये तो सोचने वाली बात है, हर काम को इस कसौटी पर परखना। और दूसरा पहलू क्या है?
दूसरा और शायद ज्यादा सीधा और असरदार है मानवता का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ ह्यूमैनिटी। ये कहता है इस तरह से काम करो कि तुम मानवता के साथ, चाहे अपने व्यक्ति में या किसी अन्य के व्यक्ति में, हमेशा एक ही समय में एक साध्य, एंड के रूप में व्यवहार करो, और कभी भी केवल एक साधन के रूप में नहीं।
साध्य की तरह व्यवहार करूं, साधन की तरह नहीं, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि हर इंसान का अपना एक आंतरिक मूल्य है, एक गरिमा है। हमें लोगों को सिर्फ अपने मकसद पूरे करने के लिए एक औजार या चीज की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें उनकी इंसानियत का, उनकी अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों का सम्मान करना चाहिए।
तो मतलब दूसरों का शोषण न करना, उन्हें धोखा न देना, उनकी इज्जत करना।
हाँ, स्क्रूटन बताते हैं कि ये कांट की नैतिकता का दिल है। आज हम जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उसकी गहरी दार्शनिक जड़ें यहीं पर हैं। हर तर्कसंगत प्राणी, रैशनल बीइंग, अपने आप में एक लक्ष्य है।
और ये चीज कांट की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी की धारणा से कैसे जुड़ती है?
देखिए, कांट के लिए सच्ची आजादी का मतलब ये नहीं कि जो मन में आया वो कर लिया। वो तो अक्सर अपनी इच्छाओं का गुलाम होना होता है। सच्ची आजादी या स्वायत्तता है उस नैतिक कानून के अनुसार जीना जो हम एक तर्कसंगत प्राणी के तौर पर खुद को देते हैं।
मतलब नैतिक होना ही स्वतंत्र होना है
एक तरह से। हाँ, नैतिक कानून का पालन करना कोई बाहरी मजबूरी नहीं, बल्कि हमारी अपनी तर्कसंगत प्रकृति की अभिव्यक्ति है।
ठीक है, ये समझ आया। तो हमने ज्ञान की सीमाएं समझ ली, नैतिकता का आधार भी देख लिया, लेकिन वो जो शुरू में बात हुई थी, विज्ञान की नियतिवादी दुनिया और नैतिकता की स्वतंत्र दुनिया के बीच की खाई, क्या कांट उसे पाट पाए? स्क्रूटन कहते हैं कि यहीं पर कांट की तीसरी बड़ी किताब क्रिटिक ऑफ जजमेंट काम आती है। ये कैसे?
हाँ, ये कांट के सिस्टम का तीसरा और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है, पर स्क्रूटन इसे बहुत जरूरी मानते हैं। वो कहते हैं कि ये तीसरी किताब एक पुल की तरह है जो पहले दो क्रिटिक की दुनियाओं को जोड़ती है।
अच्छा, कैसे जोड़ती है?
कांट यहाँ दो तरह के निर्णयों, जजमेंट्स की बात करते हैं, सौंदर्य निर्णय, एस्थेटिक जजमेंट, और टीलियोलॉजिकल निर्णय।
टीलियोलॉजिकल जजमेंट।
सौंदर्य निर्णय मतलब
सुंदरता के बारे में।
हाँ, जब हम कहते हैं ये गुलाब सुंदर है, तो ये एक खास तरह का अनुभव है। ये है तो हमारी अपनी भावना, मतलब सब्जेक्टिव है।
हाँ, किसी को सुंदर लग सकता है, किसी को नहीं।
सही कहा। लेकिन फिर भी जब हम कहते हैं कि ये सुंदर है तो हमें लगता है कि ये सिर्फ हमारी निजी पसंद नहीं बल्कि इसमें कुछ ऐसा है कि सबको इसे सुंदर मानना चाहिए। हम एक तरह की सार्वभौमिक सहमति यूनिवर्सल असेंट का दावा करते हैं।
ये तो है।
और ये भावना निस्वार्थ होती है, मतलब हमें गुलाब इसलिए सुंदर नहीं लगता कि हम उसे तोड़कर बेच देंगे या उससे कोई और फायदा होगा, हम बस उसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं।
ठीक है, पर इसका उस खाई से क्या लेना देना, विज्ञान और नैतिकता की खाई?
कांट को लगता है कि सुंदरता का ये निस्वार्थ अनुभव या फिर प्रकृति की विशालता और शक्ति को देखकर जो विस्मय और भय का मिलाजुला भाव आता है, जिसे वो उदात्त कहते हैं, जैसे ऊंचे पहाड़ या तूफानी समंदर को देखना।
हाँ, वो अनुभव तो अलग ही होता है।
हाँ, तो कांट कहते हैं कि ये अनुभव हमें एक संकेत या एक आभास देते हैं, ये हमें महसूस कराते हैं कि शायद ये प्राकृतिक दुनिया, जिसे विज्ञान सिर्फ कारण और प्रभाव के नियमों का खेल बताता है, वो किसी तरह हमारी मानवीय क्षमताओं, हमारी तर्क शक्ति और हमारे नैतिक उद्देश्यों के साथ तालमेल में है, जैसे कि ये दुनिया हमारे लिए ही बनी हो।
अच्छा, तो ये हमें उस वैज्ञानिक दुनिया में थोड़ा घर जैसा महसूस कराते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये अनुभव विज्ञान की दुनिया और नैतिकता की दुनिया के बीच एक भावनात्मक और बौद्धिक पुल का काम करते हैं। और दूसरा है टेलियोलॉजिकल निर्णय, यानी प्रकृति में खासकर जीवित प्राणियों में एक उद्देश्य या डिजाइन देखना।
जैसे आंखें देखने के लिए बनी हैं या पंख उड़ने के लिए?
हाँ, कांट कहते हैं कि हम ये साबित तो नहीं कर सकते कि प्रकृति का सच में कोई उद्देश्य है, लेकिन जीवों के बारे में जैसे कि वो किसी उद्देश्य से डिजाइन किए गए हों, ऐसा सोचना हमारे लिए जरूरी है, खासकर बायोलॉजी जैसी साइंस के लिए। ये हमें प्रकृति को एक सिस्टम के रूप में देखने में मदद करता है जो हमारे नैतिक लक्ष्यों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ता है।
तो स्क्रूटन के अनुसार ये तीसरा क्रिटिक कांट के पूरे सिस्टम को पूरा करता है, उसे बांधता है।
हाँ, वो उस मेहराब की चाबी की तरह है जो पूरे ढांचे को टिकाए रखती है।
तो अगर हम स्क्रूटन की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो कांट के दर्शन से हमें क्या मुख्य संदेश मिलते हैं?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और बुनियादी बात है वो कोपरनिकन क्रांति, कि हम दुनिया के सिर्फ निष्क्रिय दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय निर्माता भी हैं। हमारा मन हकीकत को सिर्फ रिसीव नहीं करता, उसे बनाता भी है।
हाँ, ये तो बड़ी बात है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब ये याद रखना कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, ये सिर्फ बाहरी चीजों पर नहीं, हमारे अपने दिमाग, हमारी धारणाओं, हमारे पूर्वाग्रहों पर भी निर्भर करता है, है ना?
बिल्कुल। और दूसरा मुख्य संदेश?
दूसरा, हमारे ज्ञान और तर्क की सीमाएं हैं। कांट ने ये साफ किया कि हम क्या जान सकते हैं अनुभव की दुनिया, और किसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं या विश्वास कर सकते हैं, जैसे ईश्वर, आत्मा। ये हमें एक तरह की बौद्धिक विनम्रता सिखाता है।
हाँ, कि हम सब कुछ नहीं जान सकते।
सही कहा। तीसरा, नैतिकता का आधार हमारी तर्क शक्ति और स्वतंत्रता है, न कि भावनाएं या नतीजे। वो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव हमें एक वस्तुनिष्ठ कसौटी देता है सही गलत परखने की।
ये चीज रोजमर्रा में कैसे काम आती है?
ये हमें अपने कामों के पीछे की नीयत और सिद्धांतों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। क्या मेरा काम ऐसा है जिसे मैं चाहूंगी कि सब करें? क्या मैं लोगों को सिर्फ इस्तेमाल तो नहीं कर रही? ये सवाल हमें बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं।
चौथा संदेश, मेरे ख्याल से वो मानवीय गरिमा और स्वायत्तता वाला है।
हाँ बिल्कुल, हर इंसान का अपना एक आंतरिक मूल्य है, क्योंकि वो एक तर्कसंगत और स्वायत्त प्राणी है। उसे कभी भी सिर्फ एक साधन नहीं समझना चाहिए। ये हमें दूसरों के साथ सम्मान से पेश आने की याद दिलाता है, चाहे वो घर पर हों, काम पर हों या कहीं और।
और पांचवा?
हाँ, वो तीसरे क्रिटिक से जुड़ा हुआ।
हाँ, कि प्रकृति और स्वतंत्रता की दुनियाओं में एक तालमेल है जिसे हम सुंदरता और उद्देश्य के अनुभवों में महसूस कर सकते हैं। ये हमें उस ब्रह्मांड में थोड़ा अपनापन महसूस कराता है जिसे विज्ञान अक्सर ठंडा और इम्पर्सनल बताता है। ये हमें सिर्फ उपयोगितावादी नजरिया रखने से रोकता है।
स्क्रूटन की किताब कांट के कुछ बेहद यादगार विचारों को सामने लाती है, कुछ ऐसी बातें जो सच में सोचने पर मजबूर करती हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे वो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का पहला नियम, केवल उसी सिद्धांत पर चलो जिसके बारे में तुम साथ ही साथ ये भी चाह सको कि वो एक सार्वभौमिक कानून बन जाए, ये एक तरह का मेंटल चेक है। हाँ, और दूसरा जो शायद और भी ज्यादा जरूरी लगता है आज के जमाने में, इंसानियत के साथ हमेशा एक मकसद की तरह व्यवहार करो, कभी भी सिर्फ एक साधन की तरह नहीं।
ये तो सच में हर किसी को याद रखना चाहिए। ये सीधा शोषण और हेरफेर के खिलाफ जाता है। ये आधुनिक मानव अधिकारों का आधार है।
और एक और जो आपने बताया था क्रिटिक ऑफ जजमेंट से, सौंदर्य नैतिकता का प्रतीक है।
हाँ, ये थोड़ा अमूर्त है, पर इसका सार ये है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के सुंदरता की सराहना करते हैं, तो वो अनुभव हमें नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की याद दिलाता है, जहाँ हम सही काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही है। ये हमें प्रकृति और नैतिकता को जोड़ने का एक रास्ता दिखाता है।
और आखिर में कांट का वो प्रसिद्ध कथन, मुझे आस्था के लिए जगह बनाने के लिए ज्ञान को सीमित करना पड़ा।
यह उनके पूरे प्रोजेक्ट का सार है। उन्होंने विज्ञान की जमीन पक्की की, लेकिन साथ ही ये भी दिखाया कि विज्ञान सब कुछ नहीं है, नैतिकता, धर्म, आस्था के लिए भी जगह है जो विज्ञान के दायरे से बाहर है। ये विज्ञान और आस्था के बीच संतुलन बनाने की एक कोशिश थी।
तो ये सब महान विचार हैं, पर सवाल वही है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन विचारों को कैसे उतार सकते हैं? स्क्रूटन कुछ बताते हैं इस बारे में।
हाँ, स्क्रूटन इशारा करते हैं, देखिए ये कोई रेसिपी बुक तो नहीं है, पर दिशा जरूर मिलती है। पहली चीज तो वही बौद्धिक विनम्रता और आलोचनात्मक सोच है। ये समझना कि हमारी समझ सीमित है, हमारी अपनी धारणाओं से प्रभावित है।
मतलब अपने विचारों पर भी सवाल उठाना।
बिल्कुल, और निश्चित रूप से जानने योग्य क्या है और विश्वास या अनुमान का विषय क्या है, उसमें फर्क करना। दूसरी बात, वो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव।
हाँ, वो नैतिक फैसलों में कैसे मदद कर सकता है?
उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। जब भी कोई नैतिक दुविधा हो, तो खुद से वो दो सवाल पूछें। क्या मैं चाहूंगा कि सब ऐसा ही करें, और क्या मैं किसी इंसान को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ?
ये तो काम की चीज है, बिजनेस में, रिश्तों में।
हाँ, हर जगह कर्मचारियों या ग्राहकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट का जरिया न समझना, या निजी रिश्तों में दोस्तों, परिवार वालों की आज़ादी का सम्मान करना, उन्हें अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश ना करना।
और वो कला और प्रकृति वाली बात,
वो हमें याद दिलाती है कि हर चीज को सिर्फ उसके फायदे, यूटिलिटी के लिए ना देखें, चीजों की उनके अपने लिए सराहना करना सीखें। कोई संगीत सुनना, कोई पेंटिंग देखना, या बस पार्क में टहलना, ये चीजें हमें सिर्फ एक उपभोक्ता या मशीन बनने से बचाती हैं।
और आखिर में व्यक्तिगत जिम्मेदारी और स्वायत्तता।
हाँ, कांट का दर्शन हमें जिम्मेदार बनाता है। सच्ची आजादी नियमों का न होना नहीं, बल्कि सोच समझकर चुने गए नैतिक सिद्धांतों के अनुसार जीना है। ये हमें बाहरी हालात को दोष देने या सिर्फ आवेग में काम करने से ऊपर उठकर सचेत रूप से अपने जीवन के सिद्धांत चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है।
तो कुल मिलाकर स्क्रूटन के कांट से जो सबसे कीमती सबक मिलता है, वो ये है कि इमैनुअल कांट ने आधुनिक दुनिया को समझने और उसमें जीने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और टिकाऊ ढांचा दिया है।
हाँ, उन्होंने एक ऐसा दर्शन बनाया जो एक साथ विज्ञान के दावों को सही ठहरा सकता है, नैतिकता की जरूरत का बचाव कर सकता है, और आस्था की संभावना को भी बचाए रख सकता है बिना एक दूसरे को काटे।
अगर पाठक को तीन बड़े बदलाव महसूस होने चाहिए चर्चा के बाद, तो वो क्या होंगे?
पहला, निष्क्रिय दर्शक से सक्रिय निर्माता तक का बदलाव। हम दुनिया को सिर्फ देखते नहीं, हमारा मन उसे बनाने में सक्रिय भागीदार है।
दूसरा,
नतीजों पर आधारित नैतिकता से सिद्धांतों पर आधारित नैतिकता का बदलाव। काम का नैतिक मूल्य उसकी नियत और सिद्धांत में है, सिर्फ नतीजे में नहीं।
और तीसरा?
तीसरा, विज्ञान और आस्था के संघर्ष से सह अस्तित्व तक का नजरिया। विज्ञान कैसे का जवाब देता है, नैतिकता और आस्था क्यों और कैसे जीना चाहिए से जुड़े हैं, दोनों के अपने दायरे हैं।
स्क्रूटन कांट को सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि इस दार्शनिक के रूप में पेश करते हैं जिसने आधुनिक मन का नक्शा तैयार किया। और उनका अपना योगदान यह है कि उन्होंने इस बेहद जटिल सिस्टम को समझने लायक बनाया है।
बिल्कुल, कांट ने तर्क की सीमाओं और उसकी संरचना को समझकर एक ऐसे जमाने में जहां शक बढ़ता जा रहा था, इंसानी गरिमा, स्वतंत्रता और वस्तुनिष्ठ सत्य की एक मजबूत रक्षा की। और ये चीजें आज हमारे लिए शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।